धर्म और कर्म की चर्चा चालू थी। धर्म क्या है और कर्म क्या है, बाबा ने श्रेष्ठ स्मृति दिलाई है, मैं आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, दिव्य गुणों का स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, उदाहरण दिया स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं, उसको समझाने के लिए उदाहरण दिया स्व और पर की चर्चा से हम इधर चले गए थे, अभी फिर से ट्रैक पे। तो पर और स्व ये एक बात बताई, उसी का दूसरा अर्थों से बाबा ने बताया व्यर्थ संकल्प और प्रश्न था ना अभी अभी, और पुराने संस्कार, ये उसका दूसरा रूप है। ये अगर है तो भी क्या कहेंगे, स्वदर्शन चक्र नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में जो बाप के संस्कार है वो हमारे संस्कार है। बाप के संस्कार है सदा वरदानी वरदाता, रहम दिल परोपकारी सदा उपकारी, तो जो बाप के संस्कार है वही मेरे संस्कार हो। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, और उदाहरण में उदाहरण, जैसे देह के संस्कार कितने पक्के हो गए हैं, स्वरूप बन गए हो उसका, न चाहते हुए भी अपनी ओर खींचते हैं, ये संस्कार ही तो वो चाबी है जो कि आत्मा को चलाती है, ऑटोमेटिक चाबी है, संस्कार ऑटोमेटिक हो गए, जैसे आदत बन गई है, आदत एक बार बन गई, अगर विकारों की आदत बन गई तो सारा जीवन विकारी व्यक्ति भोग भोगता है और मरणासन्न तब भी होता है, तब भी कहता है वंस मोर, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, भोग की तृष्णाएं भोग की लालसा ऐसी है कि विक्षेप उत्पन्न करती है मन में, विक्षिप्त अवस्था होती है जिससे एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न होती है, उसके प्रभाव में व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता। जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाप के संकल्प हो मेरे संकल्प, जो बाप का कर्तव्य सो हमारा कर्तव्य, जो बाप के बोल वो हमारे बोल, जो बाप की वृत्ति और जो बाप की दृष्टि वो हमारी वृत्ति और हमारी दृष्टि, जो उसके टाइटल वो हमारे टाइटल। संस्कार, फिर बाबा ने कहा जैसे ये दोनों का मेल हो जाना, कर्म का और धर्म का, यही इस संगम युग की विशेषता है। इसको समझाने के लिए और दो तीन उदाहरण दिए बाबा ने, जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध बाप ने आकर जोड़ा, वैसे ही धर्म और कर्म का मेल करो। जैसे झूला जूस की, जैसे कर्म और योग, वैसे ही कर्म और धर्म का मेल करो। जैसे उदाहरण के अंदर उदाहरण, बाबा एक रीति से साहित्यकार भी है, जो महान साहित्य होती है शेक्सपियर और जो कालिदास की रचनाएं हैं उनमें इस तरह के होते हैं, एक सिमिली के अंदर दूसरा सिमिली, एक मेटाफर के अंदर दूसरा मेटाफर, बाबा यहां पर उसी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे झूला, अगर एक रस्सी छोटी हो एक बड़ी हो, अगर एक रस्सी टूटी हो या फिर ऊपर नीचे हो या समान न हो, इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया है एक ही बात बताने के लिए, तो क्या होगा, संगम युग की प्राप्तियां है वो उसके झूले में नहीं झूल सकेंगे। संगम युग के झूले कौन कौन से हैं, अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशी का झूला, प्रेम का झूला, शांति का झूला, आनंद का झूला, वहां रत्न जड़ित झूले होंगे सतयुग में, परंतु यहां यह झूले होंगे। परमात्मा मिलन का, पवित्रता का झूला, ये सारा जो है बाबा ने कहा अगर रस्सी कम ज्यादा हुई तो अप्राप्ति का अनुभव होगा, प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा, प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे, और कुछ चाहिए यह भाव होगा, मिला नहीं यह भाव होगा। तो इसका उदाहरण दिया बाबा ने, फिर से एक बात कही, मैं कौन, इसके तीन स्वरूप बाबा ने बताए, कौन से, जानना, पहले जानना, फिर मानना, और तीसरा स्वरूप बनना। सबसे फर्स्ट स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो उसमें पास है, बाबा ने कहा आज पास है कहां, परंतु क्या वास्तव में हमने केवल जाना भी है कि बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन एकत्र की है? जानना अर्थात क्या, ज्ञान अर्थात क्या? ज्ञान कुछ और चीज है, ज्ञान अर्थात बोध, ज्ञान अर्थात समझ। जानकारी नहीं है, जानकारी तो मृत तथ्यों का संग्रह जो है वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान अर्थात जीवंत सत्य, ज्ञान अर्थात जीवंत बोध, ज्ञान अर्थात सत्य की प्रतीति, सत्य का अनुभव, ज्ञान अर्थात अनुभव। विवेकानंद ने कभी धर्म को एक ही शब्दों में परिभाषित किया है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अर्थात अनुभूति। अगर किसी ने अनुभव ना किया हो और केवल शास्त्र पढ़े हो, उसे धार्मिक नहीं कहा जाएगा। धार्मिक व्यक्ति वही है जो अनुभवी है। रिलीजन इज रियलाइजेशन, एक ही शब्द में धर्म की परिभाषा दी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है जानना। पर क्या हमने सब कुछ जान लिया है? हमारे मन में कितने सारे अभी भी प्रश्न है इस ज्ञान के, कितने सारे हैं कि ऐसा क्या होता है इस शरीर में, पता नहीं सुबह अमृत वेले क्यों नींद आती है, कितने सारे प्रश्न है। क्या इसका उत्तर हमें मिला है? क्यों हमको मुरली के समय नींद आती है, क्या इसका उत्तर मिला है? कैसे हम जाने कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे, कैसे हम जाने हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे, हमारा स्वास्थ्य के बारे में कितनी हमको जानकारी है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो नहीं, वो जानना चाहिए तो संसार में बाजार लगा पड़ा है डॉक्टरों का, उसके पास जा सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की क्या गति है, कितने ही प्रश्न हैं। बाबा ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, पर क्या हमने वो सारे जाने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं? यह स्कूल जो चालू हुई है जनवरी मास में चालू हुई है, हमने एडमिशन मार्च में लिए, किसी ने मई में लिए, किसी ने जून में लिए। पीछे का 69 से लेकर अब तक इस सभा में ऐसा कौन सा कुमार है जिसने सारी मुरलियां पढ़ी है, या फिर कुमारियों में 69 से लेकर अब तक की सारी अव्यक्त वाणियां? केवल पढ़ना नहीं, वेरी गुड, इनको तो इनाम देना चाहिए फिर, परंतु पढ़ना एक स्टेज है, परंतु उसके सिवा तो आगे बढ़ नहीं सकते। जब पढ़ेंगे तब तो आगे का आएगा, पढ़ा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कितनी सारी बातें हैं, कितनी मुरलियां जो है वो कुमारों पर है, कितनी मुरलियां कुमारियों के ऊपर है, कितनी मुरलियां एक एक विकार का कितना लंबा लंबा विश्लेषण है एक एक मुरलियों में। क्या हमने वो सब पढ़ लिया जो इतनी शांति से हम बैठे हुए हैं और दूसरों को हम कहते हैं कि हम ज्ञानी है? क्या ये दंभ नहीं? क्या ये दिखावा नहीं? क्या ये झूठा आडंबर नहीं? उसने तो सब कुछ बताया पर हमें पता नहीं, और जब एग्जाम पेपर आएगा तो हम कहेंगे ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। क्या कहेंगे? जीवन में जब परिस्थिति आएगी तो कहेंगे ये तो बाबा ने बताया ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाबा ने नहीं बताया, सब कुछ बता चुके हैं, परंतु टाइम की बात है प्रफुल्ल भाई, बरबर टाइम की बात है ना, टाइम निकालना पड़ेगा। ज्ञान और योग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, रुचि शौक जो वो सब करने की आदत है, क्रिकेट मैच देखने की आदत है, बेचैनी होती है अगर भारत हार रहा हो तो, भारत के हो या विश्व के हो, स्वयं को भारत का समझना यह भी कितनी हद है। क्या हम हद के हैं? हम बेहद के हैं। माई इंटरेस्ट आर इंटरनेशनल नॉट जस्ट इंडियन, फिर से स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि मेरे जो इंटरेस्ट है वो इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल, वैश्विक कार्य के लिए हम आए हैं इस संसार में। ये कहां हम हदों में फंसे और कौन सी हार और कौन सी जीत, जैसे कल भी कहा था उसी समय, इन दैट मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट यदि हमारा देह छूट जाए तो क्या वहां बाप की स्मृति है? किसकी स्मृति है? चाहे बुद्धि में ज्ञान है उस समय, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम शरीर छोड़े, इतना जीवन भर ज्ञान योग किया, उसका क्या फायदा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, ऐसी हमारी स्थिति है। इसके लिए जानना है, पहले फर्स्ट स्टेप इज जानना। जानने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जानने के लिए किताबें एकत्र करनी पड़ेगी। कहां है मुरलिया की किताबें, पता नहीं कहां अलमारी में रखी है। दत्ता भाई कहां है, उसको पहले तो ढूंढना पड़ेगा हमको कि कहां रखी है। इस सीजन की मुरलिया जिसने सभी संभाल के रखी है वो हाथ खड़ा करो, संभाल के रखी हुई है, और वो हाथ खड़ा करो कि अभी अगर कहा जाए कि कहां है तो उनको ढूंढना चालू करना पड़ेगा, वो हाथ खड़ा करो कहीं यहां रखी है वहां रखी है, और जिनको जिन्होंने जमा की ही नहीं है वो हाथ खड़ा करो, उनको पता ही नहीं, पता नहीं कितनी मुरलियां चली और कहां रखी है और क्या हुआ उनका, और कुछ उसमें से होमवर्क भी था या नहीं था, या छह मास में कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना है उन मुरलियों से। अगर ये अवस्था है तो हमने सबसे पहली स्टेल में फेल है। आज बाबा मुरली में कह रहे हैं कि जानने में सब पास है परंतु इस क्लास में पास नहीं है, फिर कितना अच्छा लगेगा बाबा को भी। क्यों? ये सुनकर रिपोर्ट कुमार भट्टी में, सारे कुमार पहली स्टेप स्टेज में क्लीन बोल्ड, अच्छा लगेगा उसको। वो आया परम धाम से, कितना दो दो घंटा रहा, बोलता रहा बोलता रहा, उसके अमृत वचन निकलते रहे और सुनने वाले, मुरली में बाबा ने कहा ये टीचर इतना अच्छा है कि जो बोलता है ऐसा पढ़ाई पढ़ाता है कि छपाई हो जाती है बुद्धि में। याद है महावाक्य बाबा का इस सीजन की मुरलियों में, 18 जनवरी की मुरली पढ़ाई के ऊपर है, टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि छपाई हो जाती है, और स्टूडेंट कहते हैं वी डोंट थिंक सो। स्टूडेंट क्या कहते हैं, हमें नहीं लगता है कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, कितना हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसका। जिन्हें पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं वो इस ईश्वरीय गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही नहीं है, दिखावा मात्र स्टूडेंट है। क्या ये दिखावा नहीं? जैसे सन्यासी और संसार के लोग दिखावा कहते कहते हम भी तो दिखावा नहीं कर रहे, श्वेत वस्त्र पहन लिए, बैच लगा लिया और डायरी हाथ में है, परंतु ज्ञान केवल डायरी में ही है, बुद्धि में कुछ नहीं है। बुद्धि में व्हाट्सएप और ग्रुप्स और ईमेल। फर्स्ट स्टेप जानना, दूसरी स्टेज मानना। मान भी लिया है पर क्या वास्तव में माना है? बाबा ने कहा तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्या हमारे अंतर मन ने इसे स्वीकार किया है? क्या सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात गई है, या सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी विकार भरे हुए हैं और ये संकल्प तो बस ऊपर ऊपर है, कॉन्शियस चेतन में है, अवचेतन में कुछ और ही है। ये पहुंचे है एक एक संकल्प, मैं विश्व परिवर्तक हूं ये हम समझ रहे हैं स्वयं को। मानना इतना आसान नहीं है, अपने मन को कोई बात स्वीकार कराना उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक एक ही संकल्प में स्थित होकर स्वयं को बैठकर स्वीकार कराना ये मैं हूं, तो वो कार्य बनेगा। जानना मानना और तीसरा सबसे हाईएस्ट स्टेज है वो है स्वरूप बनना। और एक बार यदि स्वरूप बन गया, एक बार अगर संस्कार बन गया, एक बार अगर आदत बन गई, एक बार अगर नेचर नेचुरल बन गया तो वो स्वत ही काम कर रहा है, करता है, जिसको बाबा कह रहे हैं संस्कार ऑटोमेटिक चाबी है, वो चाबी कार्य करती है। जिसको चिंतन की आदत पड़ गई है वो चाहे कहीं पर भी रहे और कितना भी कम समय मिले उसमें भी चिंतन करेंगे। जिनको रूहानी ड्रिल करने की आदत पड़ गई है वो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए उन परिस्थितियों में भी ड्रिल करेंगे। जिनको योग करने की आदत है, एक जगह स्थिर बैठने की आदत है, अध्ययनशील जो हो चुके हैं वो चाहे कहीं पर भी चले जाए वो आदत स्वतः ही कार्य करेगी। जिनको लिखने की आदत हो गई है, रोज एक टॉपिक लेकर उस पर लिखो, तीन दिन मुश्किल रहेगा, चार दिन मुश्किल रहेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने के बाद में इचिंग होगा, फिर तो इचिंग पता है ना कि कुछ लिखो, अभी अच्छा पॉइंट आया है, अच्छी टॉपिक आई है, इस पे कुछ लिखना चाहिए। लिखना एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है। कुछ आत्माएं इस संसार में ऐसी है जिनकी कलम सेवा करती है, और यज्ञ में सबसे बड़ा उदाहरण है जगदीश भाई कैसे वरदान प्राप्त हुआ जो दिखाया है उनके जीवन में। रात को बाबा ने होमवर्क दिया कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक इंग्लिश में और एक हिंदी में पत्र लिखो। उनके साथ चार लोग और थे, चारों ही बड़े बड़े ऑफिसर थे, कोई मैनेजर था, कोई कुछ था, कोई प्रिंसिपल था। और जैसे ही ये लोग कमरे में गए लाइट चली गई। सबने सोचा बाबा तो इतने बूढ़े हो गए क्या पूछेंगे, और वैसे भी लाइन नहीं है, लाइट नहीं है। परंतु जगदीश भाई ने क्या किया, क्योंकि पहली बार सृष्टि के आदि पिता ने यह आज्ञा दी थी। कहां गए, स्ट्रीट लाइट के पास गए, वहां जाकर लिखा, फेयर किया, तीन चार बार लिखा, और जब ऊपर आ रहे थे तब तक 3 बज गए थे और ये चार लोग उनको देख रहे थे। तो उनको थोड़ा डर हुआ अभी बाबा पूछेंगे। बाबा से मिले, बाबा ने नहीं पूछा। मुरली चली, नहीं पूछा। पहाड़ी पर लेके गए, नहीं पूछा। पहाड़ी से वापस आए, बाकी चार लोग खुश हो गए, देखा हमने पहले ही बोला था, बाबा को कहां याद रहता है ये सब चीजें। अंत में बाबा ने पूछा और कहा जगदीश भाई को, कहा कि किसने लिखा। वो चार लोग तो बैठे थे, जगदीश भाई ने अपने लेख में लिखा है कि शर्म तो उन्हें आनी चाहिए थी पर मुझे आ रही थी कि मैंने लिखा। तो वहां पर बाबा ने वरदान दिया कि आज से यू विल बी द चीफ स्पोकमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था के प्रमुख वक्ता तुम होंगे। इतना बड़ा वरदान प्राप्त हो गया। तो लिखना भी क्या है, एक आदत। जिनको नहीं है वो रोज कुछ ना कुछ लिखने का अभ्यास करो। एक बार आदत बन गई तो आदत स्वतः ही कार्य करती है। यहां पर बाबा ने और एक उदाहरण दिया है देह का। जैसे तुम स्वयं को देह समझते हो तो यह भी आदत बन गई है, संस्कार बनती है, स्वतः ही कार्य करता है। ये संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में वो प्रश्न था सुबह की क्लास में, क्या संकल्प, बोल और कर्म में स्वतः ही और सहज कार्य करे आदत। द फोर्स ऑफ हैबिट, इंग्लिश में शब्द है फोर्स ऑफ हैबिट। ऐसी ऐसी आदतें अपने आप को डालो कि जो हम उस आदतों के वश हो जाए, फिर अच्छी आदतें। जैसे अभी बुरी आदतों के वश है, अच्छी आदतें स्वयं को डालो। अमृत वेला हुआ कि तुरंत निकल जाओ कहीं घूमने के लिए, चिंतन करने के लिए। अमृत वेला हुआ डायरी कलम लिया, लिखने लगे, बजाय इसके कि जाकर सो जाए। और एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बीच में किसी ने पूछा था, भोजन का, रात्रि का भोजन मुख्यतः इतना ज्यादा न हो कि जिससे अमृत वेले नींद आए, यह भी एक आदत है। उसका भी टाइमिंग कोई विशेष परिस्थितियों में ठीक है, परंतु रोज का जो है वो फिक्स्ड हो तो अच्छा हो, कम से कम हो तो और भी अच्छा हो। रात्रि का मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रश्न आया था कि नींद आती है अमृत वेले या फिर मुरली में, 3 कैटेगरीज है नींद करने वालों की। सबसे पहली कैटेगरी अमृत वेला नींद, कौन कौन है हाथ खड़ा करो, सच्चाई से, ईमानदारी से, कभी कभी, कभी कभी और सदा, 2 कैटेगरी है। तो अमृत वेले भी नींद क्यों आती है उसके ऊपर पहले तो चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। 95 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है रात को सोने की विधि सुनाई है, कैसे सोया जाए। अगर किसी से बात भी करना है तो सेवा का समाचार भी सुना, बाबा ने उस मुरली में कहा है बाहर जाकर बात करके आओ 2 मिनट में और फिर आकर अंदर आकर सो। कहां हमसे गलती हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है, इसके ऊपर सोचना है, थोड़ा इसके ऊपर एकांत में बैठ के चिंतन करना है। कुछ कुछ है जो कभी कभी नींद आती है, कुछ कुछ है जो बहुत ही महारथी है नींद में, वो कौन कौन है नींद में महारथी वो दूसरा है समस्या। अभी हम दूसरी पूछ रहे हैं कि ज्यादा नींद आना और वो भी योग में। एक बार मेडिटेशन हॉल में मनोरेंद्र दादी क्लास करा रही थी मुरली, तो नीचे माताएं थी 3-4, इतनी सो रही थी जबरदस्त, तो दादी ने उन सबको उठाया, उठो और पीछे जो दीवार है वहां जाके खड़ी हो जाओ। तो माता तो इतनी महारथी थी कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया क्योंकि फोर्स ऑफ हैबिट, आदत है, वो किसी भी परिस्थिति में, विकराल परिस्थिति में भी काम करेगी, जबकि सब देख रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं किसी की, सभी विरोध भी अगर किया जाए तो भी वो आदत काम करेगी। जैसे एक व्यक्ति था, 30 साल तक वो आर्मी में था, 30 साल तक आर्मी में, वहां रोज ड्रिल करना, ये करना, वो करना, अभी रिटायर हो गया और एक बार, विदेश की कहानी है, अपने सिर पर बहुत सारा सामान लादते हुए, बड़ा ही मुश्किल से लड़खड़ाते हुए ऐसे ऐसे चलते रहता है। उधर दो नौजवान युवक दुकान में बैठे थे, उनको लगता है कुछ तो मजाक किया जाए और जोर से चिल्लाते अटेंशन, तो वो एकदम अटेंशन हो जाता है और सारा सामान नीचे, तो उसको गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने अटेंशन क्यों कहा। वो कहता है इस देश में क्या ऐसा कोई नियम है कि जो अटेंशन ना कहा जाए। वो कहता है नहीं, मैं 30 साल कहां था, आर्मी में था, तो वहां तो रोज ड्रिल होती है ना, तो अभी तो वो पूरा हो गया, परंतु संस्कार कहां गया? संस्कार तो है, वो किसी भी परिस्थिति में काम करेगा अगर वो संस्कार का बीज है। उसी तरह यदि विकार के संस्कार का बीज है तो चाहे बाबा के सम्मुख भी बैठे है तो भी वो बाहर आ सकता है। बाबा ने कहा अंश और वंश सहित इसको नष्ट करो। उसके लिए पहले तो ये स्वीकृति आवश्यक है कि वो है, परंतु हमारा अहंकार कहता है कि हम नहीं बताएंगे दूसरों को योगी है। हम क्यों बताएं, हम योगी थोड़े कम है, अपने योगी पने का और ज्ञानी पने का स्टेटस भी तो मेंटेन करना है इस परिवार में कि नहीं, ऐसे सोचते हैं ना। पर हम किसको धोखा दे रहे हैं? हिंदी में शब्द है आत्म प्रवंचना, किसको प्रवंचित कर रहे हैं? स्वयं को, सेल्फ डिसेप्शन, किसको धोखा दे रहे हैं? खुद खुद को धोखा दे रहे हैं। सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं या चला रहे हैं, चल रहे हैं या चला रहे हैं, दोनों इसमें आए, चाहे सेंटर चलाने वाले और सेंटर में आने वाले स्टूडेंट टीचर सभी। आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, सबसे पहले इस धोखे से मुक्त होना है। सबसे पहले तो यह जानना है कि हमने कुछ नहीं जाना, सबसे पहले यह जानना है हमने कुछ भी अनुभव अब तक नहीं किया। अभी करना है तो दूसरा संकल्प आएगा, अभी भी वो वासनाएं वैसी ही भरी पड़ी है चित्त में, अभी इस चित्त को निर्वासना करना है, अभी स्वयं को विकारों से मुक्त करना, सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप से उसके, नहीं तो वो आदत बन के कोई अटेंशन कहेगा तो हम भी अटेंशन और वही हालत होगी। इसके लिए ये मुरली तो और बड़ी है, परंतु आज सुबह की क्लास में इतनी ही सुनाई गई, इसके लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नहीं तो ये मुरली में आगे बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही है, मनपसंद बनने के लिए कौन सी झुकना पड़ेगा, मोल्ड होना पड़ेगा, अपनी नहीं चलानी है, दबना पड़ेगा, परंतु ये दबना दबना नहीं है, सहनशीलता के ऊपर। इस मुरली में और एक पॉइंट जो रहेगा ये वो है, जो नए आए हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा, लाडले बच्चे, नए जो है वो नए नहीं है, नए थे नए हैं, अब पुराने थे पुराने हैं, पुराने सो नए हैं, और क्या कहा, उनको आते ही सबसे पहला अधिकार प्राप्त हुआ। कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? संपूर्ण पवित्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, पवित्रता को कमजोर नहीं करना, अगर ये करोगे तो लासो फास्ट जा सकेंगे। कल हमने कहा था कि इस यज्ञ में सबसे आगे कौन है, जिसकी स्थिति आगे है, सेकंड नंबर इस यज्ञ में सबसे आगे वह है जिसकी मन की पवित्रता। श्रेष्ठ है, संकल्प और स्वप्न में भी देह का आकर्षण ना हो, अगर है तो सबसे पहले स्वीकार कराओ अपने मन को, ठीक है अभी मुझे इससे मुक्त होना है। अगर हम आत्म प्रवंचना में ही रहे कि हम सब ठीक चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सुनने को बड़ा दुख होता है, परंतु उन्नति तभी होगी। अभी इसी मुरली में
हमने जो कहा था हम थोड़ा
स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो कितने स्वमान निकालने हमको? 1035। हम अभी एक्सरसाइज करेंगे, चालू करते हैं अ से। अ से कौन कौन से स्वमान है? मैं आधार मूर्त आत्मा हूं, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूं, दो एक एक, 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 एक साथ सब नहीं, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं, अंतर्मुखी आत्मा हूं, अशरीरी आत्मा हूं, आधार मूर्त आत्मा हूं, अ से अथक सेवाधारी हूं, अथक योगी हूं, अथक तपस्वी हूं, अविनाशी आत्मा हूं, अचल आत्मा हूं, अटल आत्मा हूं, अडोल आत्मा हूं, अजर अमर आत्मा हूं, अनमोल रतन हूं। दशरथ भाई कल कह रहे थे ना कि ज्ञान में उम्र कितनी है, कल कुमारों के लिए कह रहे थे ना, बाबा ने आते ही सबसे पहले अमर भाव का वरदान दिया है। अमर भाव अर्थात लंबा समय, इसमें मरना नहीं है इस जीवन में, पता नहीं कितने मर गए बीच बीच में ही। और अष्टरत्न का क्या हूं? मणका, मणका, अच्छा तो मैं अष्टरत्न का मणका हूं। और असंभव को देखो कितनी पावर है, शब्दों में ही कितनी पावर है। ऐसे हमको कुछ कुछ पावरफुल सामान निकाल के रखने हैं। मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूं। जब जीवन में परिस्थिति आ जाए या फिर ऐसी बहुत सारी सेवा एक साथ करनी हो, मल्टीटास्किंग करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वहां यह सामान कितना काम में आएगा कि मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूं। आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन बिफोर मी, माउंटेन्स विल क्रम्बल, मेरे सामने ये जो पर्वत है गिर जाएंगे, ये सारा समुंदर में पी जाऊंगा। और अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूं, अनासक्त आत्मा हूं, अनोखी आत्मा हूं, अलौकिक आत्मा हूं, अनन्य रतन हूं, अद्भुत हूं। क्या अद्भुत समान है, मैं अद्भुत हूं। और अविनाशी हो गया, अजय, अजय आत्मा हूं, मैं अजय हूं, अनादि हूं, आज्ञाकारी हूं, अनुभवी मूर्त हूं, अनुभवों की खान हूं, अभय हूं, अर्जुन हूं। इसी मुरली में बाबा ने कहा इसमें हे अर्जुन तुम बनो, पार्टियों से मुलाकात फर्स्ट पार्टी जो मनपसंद वाली पॉइंट है, वहां पे बाबा ने कहा है हे अर्जुन तुम बनो। हे अर्जुन किसमें बनना है? झुकने में। ये झुकना झुकना नहीं है, परंतु ये झुकना ही महानता है। मोल्ड होने में, इसमें अर्जुन बनो। अपनी नहीं चलानी है वहां पर, यहां सेवाओं की मुरली है, आगे ये मुरली आज पढ़ो सब लोग, अपनी नहीं चलानी है इसमें, और फुल स्टॉप लगाने में। ये चार बातें उसने कही है कि जिसमें तुम्हें हे अर्जुन तुम्हें बनना है। तो मैं अर्जुन हूं और मैं आत्मा अभिमानी हूं, अंगद समान हूं, अखंड महादानी हूं, अखंड योगी हूं, अखंड तपस्वी हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्माचारी हूं, अचल अडोल हो गया, आंखों का नूर ब्रैकेट में बाप दादा का, ठीक है हमें तो बनाने हैं सोमान अब आदि रत्न हूं, अखूट खजानों से संपन्न, अकीचार संपत्ति का मालिक हूं, क्या क्या, आलस्य और अलबेलेपन पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं, शक्तियां। इसी मुरली में, आज की मुरली में शक्तियां अगर विजय नहीं होगी तो कौन विजय होगा? आज की मुरली का स्लोगन किसे याद है? विजय रतन वो है जिनके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। मैं कौन हूं? अभी क्या समान बताया? क्या क्या, आपके आलस्य और अलबेलेपन पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली हो। दूसरा अभी लेते हैं आ, आ से समान बताओ। आज्ञाकारी आत्मा हूं, आपने आज्ञाकारी अव में बता दिया, अब इधर भी बता रहे हो आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद मगन आत्मा हूं, आनंद मूर्त आत्मा हूं, आज्ञाकारी हो गया। और आधार मूर्त आत्मा हूं, इस विश्व का आधार हूं, ये जो सृष्टि का जो वृक्ष है उसका तना मैं हूं। आदि मध्य और अंत को जानने वाली आत्मा हूं, अधिपति अधिपति आत्मा हूं। कुछ भी बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। बाबा ने कहा जो चाहे वो ड्रेस पहन लो। आजन्म ब्रह्मचारी हूं, आजन्म बाबा की राहों पे चलने वाले, बाबा के साथ जीने वाले, बाबा के साथ रहने वाले, बाबा के साथ वापस जाने वाले। आजन्म आदि वो हो गया। और पीछे से दिलीप भाई, आकर्षण मूर्त आत्मा हूं, कितना अच्छा समान है, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा हूं। कभी अमृत वेले शाम का जो योग होता है, एक अक्षर ले लो बस, अ, और सोचो अब केवल अ से जितने समान आएंगे वो याद करेंगे और उसी में योग करेंगे, तो देखना एक घंटे में स्थिति ऊपर, फिर उसके बाद में परम धाम सूक्ष्म वतन जहां जाना है जाओ। समान का अभ्यास अपने आप में एक साधना है, केवल समान में स्थित हो जाना ही संपूर्ण बनना है, बाबा ने अव्यक्त में कहा है। कभी अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा उसमें अ से जितने हमने समान यहां गिनाए उसमें हम स्थित होंगे। उसके बाद का शब्द है ई, दोनों छोटा बड़ा ई, इष्ट देव हूं, अष्ट देव हूं, आज की मुरली में वरदान। संतुष्ट मणि जो है वो तीन चीजें हो जाती है, जो स्वयं संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट करते हैं उनको तीन चीजें प्राप्त होती है, कौन सी? आज की मुरली का वरदान सुना है सभी ने आज। सबसे पहले क्या बन जाती है ऐसी आत्माएं? इष्ट देव और अष्ट देव बन जाती है। दूसरा, वरदानी महादानी स्वरूप से भी ज्यादा वरदानी स्वरूप से प्रत्यक्षता करने वाली बन जाती है। और तीसरा, मन पसंद, बाप पसंद और लोक पसंद बन जाती है। तो ये था ई से, और ई से इंद्रियों को वश में करने वाली आत्मा। हां दीपक भाई, ईश्वरीय औलाद हूं, इंद्रिय जीत हूं, ईश्वर की पालना में पलने वाली आत्मा, ईश्वर की छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूं, ईश्वरीय क्या कहा, इच्छा मात्रम अविद्या हूं, ईमानदार आत्मा हूं, ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्मा हूं, ईश्वरीय श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं, ईश्वरीय प्रेम में पलने वाली आत्मा हूं, ईश्वर हमारे साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय बच्चा, ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय चिल्ड्रन, ईश्वरीय स्टूडेंट, ईश्वरीय फॉलोअर, ईश्वरीय कुल का कुलदीपक हूं, ईश्वर का राइट हैंड हूं, ईश्वर के मस्तक का मणि हूं, गले का हार हूं, मस्तक का सिर का ताज हूं, ईश्वरीय सेवाधारी हूं, इंद्रिय जीत हूं, हो गया। ईश्वर को प्रत्यक्ष करने वाला, ईश्वर को इस धरा पर अवतीर्ण करने वाली आत्मा हूं, वो अभी बाध्य हो गया, हमने उसे पुकार, ईश्वर, ईश्वर के दिल तख्त पर विराजमान आत्मा हूं, ईश्वरीय सेवाधारी हो गया। दूसरा, ईश्वरीय गोद में हूं, ईश्वरीय, कुछ दिन पहले मुरली में एक महावाक्य आया था, फ्राइडे की मुरली, चलो स्थित हो जाओ अ के समान में, अ से जितने ही समान याद आते हैं वो सारे ही याद करने हैं तीन मिनट में। ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, उद्धार मूर्त आत्मा हूं, उपकारी आत्मा हूं, उदार चित्त आत्मा हूं, उड़ता पंछी हूं, बहुत अच्छा, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं, उन्नति को प्राप्त करने वाली आत्मा हूं, उदाहरण मूर्त हूं, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्मा हूं, उदार चित्त, उपराम हूं, उल्लास देने वाली, उल्लास में रहने वाली, अपकारियों पर उपकार करने वाली आत्मा हूं, उत्तम हूं, उत्तम पुरुषोत्तम हूं, उत्तराधिकारी हूं, ओपन माइंडेड हूं, वेरी गुड। इंग्लिश के हमेशा भूल जाते हैं, इसके लिए इंग्लिश में भी क्या क्या आते हैं वो हमको याद रखना है। और उज्जवल हूं, और भी किसी को याद आ रहे? योग में अ के जब सोच रहे थे कोई एक्स्ट्रा नया याद आया? अंधों के लिए लाठी हूं, अवतरित आत्मा हूं, यह भी नहीं बोला था किसी ने, अजूबा हूं। हमारा मन इतना क्रियाशील है, केवल उसे गति देने की आवश्यकता है। उसे अगर गति दी जाए तो न मालूम क्या क्या वो उत्पन्न कर देगा। जैसे विनाश का सब कुछ उसने उत्पन्न किया, रचनात्मक भी सब कुछ उत्पन्न किया, परंतु युवा जो है संसार का, राष्ट्र का, उनकी शक्ति जो है वो अनर्थकारी कर्मों में जा रही है। अगर यही युवा शक्ति और युवा धन रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य में लग जाए तो इस देश का कायाकल्प होगा। और वो युवा कौन है? हम। ऐनक वाला या दोनों, ऐ एकांत प्रिय, एकांतवासी, एकनामी, इकोनॉमी करने वाला, एक व्रता, एक की याद में मगन, एक बाप से प्यार करने वाला, एक बाप के प्रति समर्पण, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप में रस लेने वाला, एक बाप की याद में खोए रहने वाला, एकांत चित, एक बाप दूसरा ना कोई, पांच केले अभी तो बहुत हो गए, 10-15 केले हो गए, और एक बाप ही संसार, ए, ए, एक एक शक्तिशाली आत्मा हो, एक में ये सारे लगा सकते हैं जितने हैं। और एक मत, एकता में रहने वाली, एक रस, एकाग्रचित, एक बल, एक भरोसा, एक से सर्व प्राप्तियां, अलर्ट आत्मा हूं, अलर्ट नहीं वो आ गया ना, आ आ? एक एनर्जेटिक आत्मा, ए ठीक है चलेगा, अपना घर है और अपना ही बाप है। एकांत प्रिय हो गया, उसके बाद में ओ ओजस्वी आत्मा हूं, ओरिजिनल आत्मा हूं, ओबीडियंट सर्वेंट हूं। आपको इंग्लिश वाले ज्यादा आते ओज और तेज से आपूरित परिपूर्ण आत्मा हूं, ओशन ऑफ पीस की संतान हूं। अच्छा हूं ठीक है, ऑलराउंडर आत्मा हूं। देखो कितना अच्छा समान है, बाबा ने कितनी बार कहा है, ऑल इन, ऑनेस्ट आत्मा हूं, मैं ऑनेस्ट आत्मा हूं। अगर ये समान केवल इतना भी लिया जाए ना, मैं ऑनेस्ट हूं, तो कितना उसमें विस्तार हो सकता है। कुछ संडे में, अभी एक दो संडे पहले मुरली चली थी, बाप पसंद, लोक पसंद और स्वपसंद। स्वपसंद कौन बन सकते हैं? जो श्रीमद की लकीर के अंदर रहते हैं वो। बाप से बाप पसंद कैसे बन सकते हैं? जब बाप से सच्चे और ऑनेस्ट, सच्चाई और सफाई जहां है। और दूसरों से लोक पसंद कैसे बन सकते हैं? रिस्पेक्ट देना लेना, ये तीन बातें उस मुरली में बाबा ने कही थी। तो ओ से मैं ऑनेस्ट आत्मा हूं। देखो अभी ओ आया ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट पे अभी अभी जो मुरली चली है ये पॉइंट जाकर उससे जोड़ दिया। परंतु वो जोड़ा भी क्यों? क्योंकि जब वो पॉइंट आया था तब उसमें थोड़ा हमने मन को ठहराया था, रुकाया था। ऐसे नहीं मतलब फटाफट, मुरली लोग कितने देर में पढ़ते हैं पहले ये बताओ आप, रुको। नहीं वो यहां सुनना और वो नहीं, खुद एक अकेले में सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। 30 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट्स और 15 मिनट, 5 मिनट में पढ़ने वाले कौन कौन है? महारथी, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या पढ़ा? ना हमको पता है ना जिसको सुना है उसको पता है। सार पढ़ते हैं, सार नहीं पढ़ना होता है मुरली में। आप चालू करो जहां से मुरली चालू होती है अंत तक, वो होने के बाद में फिर महावाक्य पढ़ो और फिर प्रश्न पढ़ो और फिर धारणा के लिए सार और फिर उसके बाद में बाकी। आप स्वयं ही महावाक्य निकालो उसमें से, क्या महावाक्य हो सकता है? सोचो, आपको ये ड्यूटी दी गई यज्ञ में कि ये मुरली का मुरली है, इसमें से आपको प्रश्न निकालना है, उत्तर निकालना है और महावाक्य निकालना है और धारणा के लिए। तब आपकी जितनी लगन होगी वो कुछ और होगी जब ये कार्य दिया जाएगा। रोज ऐसा सोचो कि मुझे इससे कुछ ऐसे महावाक्य, कुछ प्रश्न निकालने हैं, तो जहीं जाकर मन वहां रुकेगा। और आज अगर एक पॉइंट आई है मुरली में एकांत की, कुछ दिनों के बाद वो पॉइंट जब रिपीट होगी तो वो पॉइंट अपने आप जाकर इससे मिलेगी और एक अद्भुत अनुभूति अंदर में होगी कि देखा कितनी अच्छी, और खुद को खुशी होगी क्योंकि हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है इस क्रिया में, इस कार्य में। फिर है क, कर्मातीत, थोड़ा लोअर बहुत पावरफुल हो गया थोड़ा ग्राउंड लेवल मैं कल्याणकारी हूं, कमल पुष्प पर विराजमान, कर्मेंद्रजीत कर्मयोगी, कर्मातीत कमाल करने वाली क्वालिटी, सारे इंग्लिश वाले ही है आपके पास प्रफुल भाई, क्वालिटी वाली आत्मा हूं, कुलदीपक हूं, करावन हार करण हार वो दोनों आ जाएंगे उसमें, मैं कम खर्च बाला नशीन आत्मा हूं, कल्याणकारी बाप की संतान, वो थोड़ा वो बाप का हो गया, हमारा थोड़ा इस लेवल के बताओ अलग अलग क वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन से मुक्त आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेने की अधिकारी आत्मा हूं, कोटों में कोई और कोई में, ऐसे अलग कैटेगरी है, जैसे एकदम अलग कैटेगरी इस तरह के बताओ, क्रिएटिव हाँ, चलो वो भी एक दूसरे टाइप की, कर्म की गुह्य गति को जानने वाली आत्मा हूं, ये भिन्न प्रकार का समान। अच्छा कितना हो रहा है, कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा हूं, वो हो गया कुमार वही भूल गया, बाकी सब याद है अच्छा ये बताओ शिव बाबा कुमार है या कुमारी? एक जगह हमने पढ़ा था कि कुमारों को नशा रहना चाहिए कि शिव बाबा भी कुमार है मुरलियों में पुल्लिंग का प्रयोग होता है या स्त्रीलिंग का के बाबा के लिए? पुल्लिंग का प्रयोग होता है ना, तो तो ये वैसी तो लिस्ट बहुत बड़ी है पर हमारे पास समय का अभाव है जी वो थोड़ा अलग प्रकार का कुमार है तो मुख्य वंश ऐसे देखो, इतने सारे जितने अ आ ई इसकी लिस्ट भी बनी हुई है, पीडीएफ जो है कईयों के पास होगा भी शायद, है ना, तो वो सर्कुलेट करना या इसके ऊपर कार्य करना, ये तो हमने जस्ट आपको बता दिया इस तरह से थोड़ा काम करना होता है चीजों पर। ये जब हम काम करते हैं तो एक नया उत्साह आता है, एक नया दृष्टिकोण, एक जैसे सोचो मेडिकल कॉलेज में एक विद्यार्थी एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, जितना वो समझता है फिर सेकेंड ईयर में समझता है, तीसरे चौथा, फिर जब डॉक्टर बनता है और उसके 10 साल के बाद अब जब बूढ़ा होता है, पहले दिन भी वही चीज देखी थी पर अभी उसका दृष्टिकोण पूरा दूसरा है। जब हम ज्ञान में आते हैं, हमारे हाथ में आज ये अगर ये मुरली जो आज ज्ञान में आए हैं उन्होंने अगर पढ़ी तो उनको कितना समझ में आएगा, एक फिर वही व्यक्ति एक साल के बाद वही मुरली पढ़ता है, अब उसका थोड़ा दृष्टिकोण यहां बदला है, फिर वही 5 साल के बाद पढ़ता है, फिर बहुत सारी ठोकरें खाई इस ज्ञान मार्ग में उसके बाद जब पढ़ता है, अभी अनुभवी मूर्त है, थोड़ा जीवन की कड़वाहट लिए हुए है, अभी कुछ और दृष्टिकोण से देखता है उसको, और जब वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और वही मुरली कर्म का आधार धर्म, तो उसका दृष्टिकोण, तो क्यों ना अभी ही इसी एक ही मुरली को पढ़ते समय अलग अलग दृष्टिकोण से उसे देखा जाए। इसके लिए जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो मुरली इंग्लिश की मुरली भी अलग से पढ़े, क्योंकि जैसे भाषा चेंज होती है थिंकिंग का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है। हिंदी मुरली पढ़ते समय आपने जो पॉइंट मिस कर दी, चाहे हो सकता है कि इंग्लिश मुरली पढ़ते समय वो पॉइंट आपको पकड़ में आ जाए। इसके लिए जब भाषा चेंज होती है, भाषा सीखना भी इसके लिए ज्यादा जरूरी है। हमने ये भी देखा है कि जिनको हिंदी कम आती है उनको मुरली भी थोड़ी कम ही समझ में आती है, भले माता है बाबा की याद में एकदम भाव विभोर हो जाती है वो दूसरी बात है, परंतु क्योंकि ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पुरुषार्थ की क्लास में भाषा सीखने के ऊपर इतना बल दिया जाता है, परंतु यदि इस ज्ञान को समझना है तो भाषा को अभी अध्ययन करना होगा, और भगवान की जो भाषा है वो हिंदी है, कुछ दिन पहले मुरली आई थी, चार पांच दिन पहले, भाषा में बहुत झंझट है, सेवाओं की पॉइंट चल रही थी ना, ट्यूसडे की मुरली सेकंड पेज, तो जिसमें बाबा ने कहा था भाषाओं में भी कितनी झंझट है, परंतु बहुत सारी भाषाएं हो गई है प्रदर्शनियां बनाने के लिए, याद है भाई को। तो भाषा को भी समझना है, जो हिंदी बाबा की जो बोली है वो बाबा किस रीति से बोलता है, क्या बोलता है, एक एक शब्द का अर्थ क्या है, वो जितना हम उसकी गहराई में जाएंगे वो एक्चुअली वो भी एक प्रेम ही है। और जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। जो कहते हैं हम छाती फाड़ कर दिखाते हैं अंदर बाबा ये बैठा है, परंतु मुरली वो हमको याद नहीं, हमको पता नहीं, हमको तो वही तो बातें हैं। कुछ दिन पहले हमने एक भाई से एक भाई ने हमको अनुभव सुनाया, वो इतने पुराने भाई है, मधुबन में 40-50 साल से रह रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही कि एक दूसरे भाई ने उनको कहा, जो कि बहुत ही सीनियर भाई थे कहीं और के, एक ऐसी बात कह दी कि दिल को जैसे आघात लगा। उस सीनियर दूसरे सीनियर भाई ने कहा मुरली में रखा ही क्या है। इस भाई को इतनी चोट लग गई ये बात सुनकर कि सारा जीवन हमने समर्पित कर दिया इसके लिए, और ये देखो क्या कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अज्ञानी नहीं, नए नए आए हुए नहीं, कई सालों से जो चल रहे। अगर ये वाक्य ऐसी आत्माओं से अगर निकलते हैं तो हमारा क्या मुरलीधर से प्यार है? मुरलीधर से प्यार अर्थात ही उसके महावाक्यों से प्यार। गीता में लिखा है, अर्जुन को कहते हैं भगवान कि जो मेरे महावाक्यों का प्रचार करता है, मैंने जो सुनाया वो सारे विश्व को सुनाता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। बाबा को भी दिल पर कौन चढ़ते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं। तो मुरली से जितना हम उसका अध्ययन अब कर रहे हैं, जिस रीति से कर रहे हैं, चेंज द पॉइंट, चेंज द आउटलुक, उसको थोड़ा अलग रीति से पढ़ो। इसके लिए कभी इंग्लिश में भी पढ़ो उसको, कभी हिंदी में भी पढ़ो। हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग जो वाक्य आते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स अलग से डायरी में नोट करके रखो, कुछ कुछ जो एकदम इमरजेंसी पॉइंट होंगे। जीवन में इमरजेंसी के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, हॉस्पिटल में कुछ होती है गोलियां, जो चलता फिरता पेशेंट है उसके लिए ओपीडी, और कुछ होता है जो गोलियां काम नहीं करती, पेशेंट बेहोश है, सीधा इंजेक्शन और आईसीयू। ज्ञान मार्ग में भी ऐसी इमरजेंसीज आई कि जहां सीधा इंजेक्शन चाहिए, केवल समान में बाप समान आत्मा हूं कुछ काम नहीं करेगा उधर, वहां कोई एकदम पावरफुल वाक्य चाहिए कि जो हमको निरुत्साहित जो हो चुकी आत्मा है, जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी, विरोध होगा, निंदा ग्लानी सब कुछ होगा, यहां पर सारे हिसाब किताब यहां चुकते होंगे, वहां हमारे पास शक्तिशाली पॉइंट्स चाहिए। उसके लिए कुछ मुरली से जो पॉइंट्स आते हैं ऐसी, उसको वहां से उठाना है, निकालना है वहां से, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स, और उसको अलग लिखना है। केवल लिखना नहीं, फिर उसका अध्ययन और चिंतन करना है, उस पर मनन करना है, उस पॉइंट को अपना बनाना है। एक है जानना, एक है मानना, और तीसरा है स्वरूप बनना। बुद्धि को, चित्त को उसमें रुकाना है, क्योंकि यही हमारे कार्य आएगा। जब जीवन में परिस्थिति आती है तो कोई मदद नहीं करने वाला, ना व्यक्ति, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक ऐसा भी कईयों को अनुभव होता है कि शिव बाबा भी साक्षी हो गया उस समय। इसके लिए स्वयं को ज्ञान योग से सुसज्जित करना है।